यहां लिखा है आय रयाकार फकीहो और फरीसियो, आय रयाकार फकीहो और फरीसियो, तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस कि पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दयाकी देते हो। पाबंद बड़े थे शरीयत पर अमल करने के। अहबार की किताब में दयाकी के बारे में एक तालीम दी गई थी और वो तालीम ये थी कि जो कुछ जमीन से पैदा होता है उसका दसवां हिस्सा खुदा को देना चाहिए। जो कुछ जमीन से उगता है, फल उगता है, तरकारियां उगती हैं, जो कुछ जमीन से उगता है उसका दसवां हिस्सा खुदा को देना है। ये अहबार की किताब में तालीम दी गई थी। अब ये जो खुदा को देना है, इसके दो दो बुनियादें थी। एक बुनियाद थी कि जब एक जिम्मेदार के खेत में सब्जी पैदा होती है और वो सब्जी का कुछ हिस्सा लाकर खुदा के घर में तरकारी देता है दयाकी के तौर पर, तो उसका ऐसा करना इस बात का इकरार है कि खुदा ही है जो हर चीज का खालक है, वही पैदा करता है, वही हमारी सारी जरूरियात पूरी करता है। तो ये एक कन्फेशन है, एक इकरार है कि कोई जिम्मेदार अपना अनाज, तरकारियां, फल और अपने माल मवेशी, ये चीजें जब वो खुदा के घर में गुजरानता था तो वो ये इकरार कर रहा है कि ये सब कुछ खुदा की वजह से पैदा हुआ है, उसने दिया है। वो ना इन चीज़ों को जिंदा रखे, पैदा करे, तो हम नहीं कर सकते। एक तो ये बुनियाद थी दयाकी देने की। दूसरी बुनियाद ये थी कि इंसान खुदा से जो बरकत भी पाता था, जब वो उसका दसवां हिस्सा लाकर खुदा के घर में रखता था तो वो खुदा की बरकत के इवज खुदा की शुक्रगुजारी का इजहार करता था कि मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे इतनी बरकत दी है, मेरी जरूरियात से बढ़कर तूने मुझे दे दिया है, और मैं आउट ऑफ लव, खुदा के मांगे बगैर मैं शुक्रगुजारी के तौर पर ये हदिया दयाकी मैं तेरी हजूरी में पेश करता हूं। तो ये दो मकसद थे। और ये फकीह और फरीसी दूसरों के सामने वो फख्र के साथ कहते थे कि मैं इन गुनाहगारों जैसा नहीं हूं, मैं हफ्ते में दो बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर क्या देता हूं, दयाकी देता हूं। कि ये रूहानियत का मियार था उनका। आज एक बात सीखिए जिसका शिकार ये भी हुए और जिसका शिकार हम भी होते हैं, और वो क्या है, शैतान के मुख्तलिफ हरबों, हीलों और हमलों में से एक हीला और हमला ये है कि वो इंसानों को रूहानी तौर पर अंधा कर देता है। ये सारा चैप्टर कभी आप घर में जाकर पढ़े, मैं तो अपनी जिंदगी में पहली दफा इस पे सरमन दे रहा हूं, घर में जाकर पढ़िए, इन लोगों की हिस्ट्री देखिए, इनकी शुरुआत देखिए, तो इनकी जो मजम्मत की गई है वो आप देखिए। आए अंधो राह बताने वालों, अंधा कैसे राह बताएंगे। बार बार इस सारे चैप्टर में मसीह के साथ इनकी मतभेड़ हो रही है। शैतान का बड़ा काम है कि वो इंसान को रूहानी तौर पर, वो किसी लेवल पर भी हो, शैतान का हमला इंसानों, ईमानदारों, मुकद्दसीन, खादमों पर, बुजुर्गों पर, उनको रूहानी तौर पर ब्लाइंड करने का, अंधा करने का हमला है। जो बालग हैं, जो होशियार और बेदार हैं, वो समझ जाते हैं, दूसरे उसकी जद में आ जाते हैं। उसके हमले की जो हिकमत अमली है अंधा करने की, वो क्या है, इससे आपको सुबाक के हवाले से, शैतान की एक हिकमत अमली है कि वो छोटी कोई चीज हो तो उसको बड़ा बनाकर पेश करेगा। मसलन आप किसी दुख में से गुजर रहे हो, आप किसी दुख में से गुजर रहे हो, तो शैतान ज़हनी तौर पर हमें ऐसा तैयार कर देगा कि दुनिया में तेरे से बड़ा दुखी को और कोई नहीं। सबसे ज्यादा तू पैदा ही दुखों के लिए होगा, छोटा दुख होगा उसको इतना बड़ा बनाकर तो वो पेश करेगा। फिर कभी कभी एहसास से कमतरी कि तू इतना मनहूस है, ना तेरी कोई शक्ल सूरत है, ना कोई पढ़ाई है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरी कोई समाजी हैसियत है, तू खानदान पर भी बोझ है, तू मुआशरे पर भी बोझ है, तेरी किसको क्या जरूरत है, तू नकम्मा है, तू हेच है, तू नलायक है। तो ये जो एहसास कमतरी सेल्फ पिटी है ये खुदा की तरफ से नहीं होता है। अच्छा वाला इंसान जो खुदा की सूरत और शबीह पर पैदा किया गया है और उसकी कदर कीमत कीड़ों मकौड़ों और हवा के परिंदों से भी कहीं ज्यादा है, खुदा ने उसके सर के बाल गिने हैं, खुदा ने उसकी उसकी जो सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, तो शैतान उसको क्या बताता है कि तू इतना बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है तू। तो इस तरह से इंसानों का दिल तोड़कर उन्हें एहसास से कमतरी में मुबतला करके तो उनको ऐसे तौर पर अंधा कर देता है कि वो ये नहीं समझते कि मैं खुदा की निगाह में क्या हूं। जितनी कीमती हम खुदा की निगाह में हैं, शायद हम एक दूसरे की निगाह में ना हो। आप अंदाजा कीजिए, अगर हम कीमती थे और हैं तो तब भी दुनिया की कीमती तरीन हस्ती जो है उसने फैसला कर लिया कि वो आसमान का जलाल छोड़कर हुए जमीन पर जाएगी और इन कीमती जानों को शैतान के जबड़े से छुड़ाने के लिए अपना आप दे देगी, रसवाई बर्दाश्त करेगी, खून दे देगी, कुर्बानी देगी, जिल्लत बर्दाश्त करेगी, मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा कर लेगी। तो बाइबल बताती है कि हम खुदा की निगाह में बेशकीमत हैं, मुअज्जम हैं, मुकर्रम हैं, हवा के परिंदों से हमारी ज्यादा जो कदर है, इसलिए कि हम खुदा की सूरत और शबीह पर खलक हुए हैं। जितनी चीज़ें खुदा ने दुनिया में खलक की हैं, इंसान खुदा का शाहकार है, मास्टरपीस है। आप इंसान देखिए, ऐसे ऐसे कीमती इंसान खुदा ने इस दुनिया के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन शैतान क्या करेगा, एहसास कमतरी में, खुद तरसी में, सेल्फ पिटी में इंसान को घेर कर कई बेचारों से अब तक वो खुदकशी करवा चुका है और कईयों के जेन में इस तरह के ख्यालात वक्तन फक्तन उठते हैं कि तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि तू अपनी जिंदगी ख़त्म कर ले और कुछ पी ले, किसी ट्रेन के नीचे आ जा, किसी दरिया में छलांग लगा दे। और इस तरह से कितनी कीमती जिंदगियां हैं आप देखते हैं कि हमारे दाएं बाएं ज़ाया हो जाती हैं और दुनिया समझती नहीं कि शैतान किस तरीके से इंसानों को बर्बाद कर रहा है। तो उसका काम यह है कि छोटी चीज को बड़ा बनाकर पेश करना। इसी तरह से अगर कोई शख्स किसी लायक नहीं है तो उसको ऐसे गरूर में मुबतला देना कि तू बड़ी शह है, अब तू किसी से को कम है, उसको बड़ा उसके अंदर बड़ा पन पैदा कर दे। चूंकि तवाजन रखने में इंसान नाकाम हो जाता है रूहानी अंधेपन की वजह से, वो अपने ताई बड़ा कुछ समझने लगता है। अगर आप घर में जाकर यूहन्ना का तीसरा खत पढ़ें तो वहां एक शख्स का नाम है दीत्रीफस। दीत्रीफस जो था वो कभी यूहन्ना का शागिर्द था और यूहन्ना ने 65 साल खुदावन की पैरवी की थी। सबसे उम्र में कम उम्र शागिर्द था मसीह का यूहन्ना रसूल, 65 साल मसीह की पैरवी करता रहा, 95 साल का हो गया। तो यही दीत्रीफस लिखा, जो अब बड़ा बनना चाहता है वो यूहन्ना जैसे रसूल की मुखालफत करता है, उसके खिलाफ बातें बकता है, वो किसी को खत देकर भेजता है कि ये मेरी तरफ से खत है, जाओ जाकर कलीसिया में पढ़ो। वो कहते हैं कि हम नहीं जानते किसी यूहन्ना को, नहीं पढ़ने देंगे। वो किसी खादम को रिकमेंडेशन लेटर लेकर भेजता है कि इसको चर्च के अंदर कबूल करें, इसको गुलाम का मौका दें, खिदमत का मौका दें। वो उसकी भी परवाह नहीं करता, क्यों, वो बड़ा बनना चाहता है। याद रखिए, बड़ा होना अलग बात है और बड़ा बनना अलग बात है। लिखा है जो अपने आप को बड़ा, खुदा किसी को बड़ा बनाए वो बात फर्क है, खुद को बड़ा बनता फिरे वो बात फर्क है, वो शैतान की तरफ से। इसीलिए लिखा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। تو اس لیے شیطان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ ابلٹی نہیں ہے, وہ اس کی کالنگ نہیں ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے, خدا کی نگاہ میں اس کا وہ مقام نہیں ہے, نہ سماج کے سامنے ہے, لیکن شیطان کہے گا تو سب سے اچھا, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں, وہ ہم جیسا ہو تو سامنے آئے. وہ اس طرح کی اسپرٹ, اس طرح کی سوچ انسانوں کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی چیز کو بڑا بناتے ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو جو چیزیں بڑی ہیں, وہ چیزیں بڑی ہیں جن کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے, وہ ہمیں ذہنی طور پر تیار کرے گا کہ یہ اتنی بڑی نہیں ہے, ان سے ساری دنیا کرتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تو کر لے گا تو اس سے کیا. اور اس کا شکار ہوئے ہیں فقی اور فریسی. کیسے؟ انہوں نے کیا سوچا, انہوں نے اخبار کی کتاب میں پڑھ کے کہ ہمیں زمین کی ساری پیداوار کی دہ یقین خدا کو دینی چاہیے, تو انہوں نے کیا سوچا کہ ہاں ہمارے ہاں جو سونف پیدا ہوتی ہے, جو ایک چھوٹا سا بیج ہے, ہمارے ایشینس کے لیے تو اس کے لیے جاننا کو اتنا مشکل نہیں ہے, یہ پیٹ کے درد کے لیے دوائی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, ہاضمے دار ہے, خوشبو اس میں ہوتی ہے, تو معمولی سی چیز ہے, اتنی قیمتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سونف ہے ہمارے پاس, جو ہمارے کھیتوں میں ہوئی ہے, ہم نے پوری کی پوری سونف پہ دہی کی دینی, زیرہ, خوشبودار مسالہ, کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا, ہاضمے کے لیے اکسیر ہے, ہم نے زیرے پہ پوری پوری دہی کی دینی, ہم نے ترکاری پہ ساری دہی کی دینی, ہم نے سداب پر, جیسے یہ سلاد وغیرہ ہوتا ہے, کوئی بھی ہربلز جو ہوتی ہیں جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, ہم اس پر پوری دہی کی دیں گے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لکھا ہے, اے ریاکار فقیہو اور فریسیو, تم پر افسوس کہ پودینے اور سونف اور زیرے پر تو دہی کی دیتے ہو, پر تم نے شریر کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا. تمہارے اندر توازن نہیں ہے, تمہاری روحانیت اور قیادت میں توازن نہیں ہے. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا خدا کے احکامات ہیں یا مذہبی فرائض ہیں, وہ تو بڑی تندہی سے تم سر انجام دیتے ہو, لیکن اس کے مقابلے جو ہائر لیول کی اسپرچویلٹی ہے کہ آپ انصاف کریں, عدل سے پیش آئیں, آپ ایمان رکھیں, آپ دوسروں پر رحم کریں, تو ان باتوں سے تم غافل ہو. جن باتوں کی پرائیورٹی ہے, ترجیح ہے, زیادہ اہم ہے, شریعت کے مختلف احکامات میں سے یہ بھاری اور بڑے حکم ہیں, ان کی پرواہ نہیں ہے. تمہیں سونف کی پڑی ہوئی ہے, تمہیں زیرے کی پڑی ہے, تم پودینے پہ دہی کی دینے میں بڑے ذمہ دار نظر آتے ہو, اس سے جو بڑی بات ہے یا باتیں ہیں شریعت کی جو بھاری ہیں, اور وہ نظر انداز کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی طور پر اندھے ہو چکے تھے. پھر ان کو توازن کن الفاظ میں بتایا؟ توازن ان الفاظ میں بتایا کہ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی. یہ ہے لائف میں توازن. ایک کام اچھا کر لیا, دوسرے کا ستیاناش کر دیا. ہماری پوری زندگی میں توازن کی ضرورت ہے. آپ سب اس بات سے جانتے ہیں, بحیثیت پاکستانی اس ملک کی پچھلے وہ کم از کم 20 سال سے جو تباہی ہوئی ہے, اور اس کی بنیادیں جو کھوکھلی ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں, وہ کس وجہ سے ہے؟ انتہا پسندی, مذہبی انتہا پسندی. اس لیے جنرل مشرف کہتے تھے, میرا ویژن یہ ہے کہ ایک ماڈریٹ پاکستان میں بناؤں گا, اعتدال پسند, جہاں توازن ہو, مذہبی انتہا پسندی نہ ہو. چھوٹی سی بات کے لیے لوگ گھروں کو اور عبادت گاہوں کو جلانے کے لیے تیار نہ ہو جائے. ابھی 12 کے 14 لڑکیوں کے اسکول ایک دو دن میں ان پر حملے کیے گئے ہیں. انتہا پسندی. تعلیم اگر کو حاصل کرتے ہیں, آپ کو کیا نقصان؟ نہیں, ہماری بچیاں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی, ये घर में रहे, आपका यूरोपियन एजेंडा है, आप यूरोपियन सकाफत हमारे बच्चों पर, हमारी औलाद पर, हमारी बेटियों पर आप लागू करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। जबरदस्ती अपना ईमान मनवाना, जबरदस्ती अपना अकीदा किसी के ऊपर ठोंसना, जबरदस्ती अपनी काबिलियत किसी के ऊपर ठोंसना, और जबरदस्ती और उसका ठोंसना जिसके पास इख्तियार नहीं है। हमारे मुल्क में शरीयत नाफज करना या ना करना यह हुकूमत का काम है, मेरा और आपका नहीं है, हुकूमत खुदा की तरफ से। जो काम हुकूमत का करना है मैं अपने हाथ में ले लूँगा तो मैं खुदा के इंतज़ाम का मुखालफ हूँ। लिखा खुदावन की खातर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताब्या रहो। तो हमारा मुल्क बर्बाद इसलिए हो रहा है, हमारे हम वतन बेचारे रोते हैं, दुखी हैं, लाखों लोग हमारे जो हैं, ख़ास तौर पर पाक आर्मी के, हमारे पुलिस के, जितने भी मुसल्ला फौज हैं या ऐसे अदारे हैं जो इस नज़्मो नसब को, अमन को कायम रखने के लिए मुकर्रर हैं, कितने लोग बेचारे हमारी खातर शहीद हो चुके हैं। सिर्फ तवाज़ुन नहीं है, इंतहा पसंदी है, मजहबी जुनून है, दूसरों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी तफसीर या तशरीफ या तौज़ीह दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती लागू करने की चाहत हमारी हुकूमतों के लिए, मजहबी अदारों के लिए, अकलियतों के लिए, हाकमों के लिए, कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए सरदर्द बनी हुई है। मैं कहता हूँ ये मुल्क इतना अच्छा है, जो दुनिया की बरकत आप गिन लें इस मुल्क के अंदर है, इतना बायस बरकत मुल्क है जिसकी इंतहा नहीं। लेकिन यही एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी, मजहबी जुनूनियत, अदारों का अपनी हदूद में ना रहना, अंदर से मुल्क को खोखला करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। कौमी यकजहती हमारी बुरी तरह मुतासर हो रही है, मुल्की तरक्की के रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, बैनुल अक़वामी हैसियत से हमारा वो मकाम, हमारा वो एहतराम और हमारी वो इज्जत नहीं है। दुनिया हम पर शक करती है, दुनिया बैरून मुल्क आम पाकिस्तानियों को कभी कभी कहीं कहीं लोग दहशतगर्द समझते हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं। लेकिन तवाज़ुन ना रख पाना, एक चीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देना, दूसरी चीज़ उससे बढ़कर अहम है, मोहब्बत है, इंसाफ है, ईमान है, रहम करना है, तरस खाना है, वो सौंफ पुदीने पर दयकी देने से बहुत ही अफजल है। लेकिन बदनसीबी तो इंसानों की ये है कि जिन्होंने अपना आप शैतान के हाथों बेच रखा है और वो शैतान के हाथों में खिलौना बन जाते हैं और वो अंधे हो जाते हैं। मैंने जो थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है आपको फकीहों और फरीसियों की, कितना अच्छा आगाज़ है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की खातर अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ कर दे, जिसके घंटों घंटे शरीयत के मुतालिया और उसको समझने में गुजर जाएं, जो अपनी कौम के लिए गैरत रखता हो, जो अपनी कौम की भलाई के लिए सोचो बचार करता हो और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी का आलम ये और कलाम की गलत तशरीह या जितनी तशरीह थी उससे आगे बढ़कर तशरीह करने की वजह से जब यीशु मसीह ने आकर नई तालीम दी तो सबसे बड़े रोमी हुकूमत के बाद सबसे बड़े मुखालफ यीशु मसीह के ये फकीह और फरीसी थे। ये सब्बत के दिन दुआ क्यों करता है बीमारों के लिए? लोगों को मना करते जाओ आज सब्बत है, दुआ कराने आ गए। پورا باب پڑھی ہے, کیونکہ میں اور باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں اس لیے میں ساری نہیں چھیڑتا, یہ تو پورے مہینے کی تعلیم ہے اس میں. تو مسیح کی بھرپور ہر سٹیپ پر تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں. یہ رستے میں جا رہے تھے, سبت کا دن تھا, یہ بالے مسل کے کھا رہے تھے, یہ شریعت نہیں توڑ رہے ہیں. مسیح نے کہا تم میں سے ایسا کون ہے سبت کے دن کسی کا کوئی بیل گر جائے, تم زمیندار ہو تمہارا بیل کنویں میں گر جائے تم نہیں نکالو گے کہ آج سبت, مرنے دو گے. کیوں؟ اندھے تھے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنقید, چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنقید, چھوٹی چھوٹی باتوں میں تنقید. اور مسیح کی خدمت میں رکاوٹ پر رکاوٹ, رکاوٹ پر رکاوٹ, رکاوٹ پر رکاوٹ ڈال رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی جو تشریح, اس حد سے بڑھ کر یہ کر رہے تھے, تو خداوند یسوع مسیح اس کی کاٹ چھانٹ کرتے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے. آئے اندھو, تم کیسے کہہ سکتے ہو, اوپر یہ کیا کہنا چاہیے لکھا ہے سترویں آئے, اہم کو اور اندھو کون سا بڑا ہے, سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہو کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں, لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہوگی اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا. آئے اندھو, کون سی بڑی ہے نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی ہے؟ پس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے, اور جو مقدس کی قسم کھاتا ہے وہ اس کے اس کے رہنے والے کی قسم کھاتا ہے, اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی قسم کھاتا ہے. مطلب کیا کہ شریعت کی جو تفسیر تھی وہ اس کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہے تھے, اور ایسے اصول, یاد رکھیے شریعت کی ایک بات یاد رکھیے جس سے آپ کو ان کی سمجھ آئے گی, شریعت میں جو تعلیم دی گئی تھی ان میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وضاحت سے تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کی گئی تھیں, تو ان کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی؟ اس کی ڈیٹیل جاننے کی, تفصیل جاننے کی, اس کی تشریح جاننے کی. تو جانا پھر کس کے پاس ہے؟ جائیں گے آپ فقیہوں کے پاس جو فقہ کے ماہر ہیں, جو شریعت کے عالم ہیں. تو اس لیے خدا نے ان کو کہا تھا کہ آئے ریاکار فقیہو, تم شریعت کے بڑے بڑے بھاری پتھر یعنی بڑے بڑے حکم جو ہیں وہ لا دیتے ہو لوگوں پر کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو, اور خود ان کو انگلی سے بھی ہلانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے 23 باب کے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فقیہ اور فریسی جو کچھ تم سے کہتے ہیں وہ کرو, لیکن جیسے کام نہ کرنا, کیونکہ یہ کہتے ہیں اور خود نہیں کرتے. یہ ان کے اوپر اعتراض تھا, اور ایک تھوڑی تھا, یہ پورا چیپٹر آپ پڑھ کر دیکھیں, یہ قابل رحم اور قابل ترس لوگ تھے بیچارے, اندر سے خدا کو پیار کرتے ہیں, خدا کی غیرت ہے, قوم کی غیرت ہے, خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں, دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں, لیکن شیطان جس کا ایک بڑا طریقہ ہے انسان کو اندھا کرنے کا, اس کی عقل پر پردہ ڈالنے کا, کہ وہ اپنی الٹی سیدھی تفاسیر کر کے تشریح کر کے وہ خدا کے کلام میں کچھ نہ کچھ بڑھا دے. یہ خطرہ ہمارے لیے بھی ہے, یہ خطرہ ہمارے لیے بھی ہے. مجھے شروع شروع میں ایک چھوٹا سا, کئی تجربے ہوئے میں آپ کو بھی ہوئے گے, کیونکہ میں شروع شروع میں پاسٹر بنا تو میری بڑی عادت تھی اخبار پڑھنے کی, تو میں نے پاکستان ٹائم اخبار لگوا لیا. میں نے سویرے سویرے اٹھنا, کچھ چائے کا کپ بنایا, پاکستان ٹائم اخبار لیا, چائے پی ایک تو اخبار پڑھنا شروع کیا. جیسے جیسے اخبار ایک کے بعد دوسرا آرٹیکل, اور میں اخبار کے اندر کے صفحات پڑھتا ہوں جہاں پہ مضامین ہوتے ہیں, جہاں کو سیکھنے والی بات ہوتی ہے. میں نے دیکھا, میں پاسٹر ہوں, میں نے اتنا وقت بائبل پڑھنے میں نہیں گزارا جتنا میں اخبار پڑھ رہا ہوں. میری ویکنیس تھی, میں نے اس پر غالب آنے کے لیے اخبار بند کروا دیا. اس وقت شاید 10 روپے کا تھا, پاکستان ٹائم میرا خیال ہے 83 کی بات ہے. پھر میں کرکٹ نہیں کھیلتا, نہ میں اپنی کلاس, میں اپنی علمی زندگی میں کلاس میں سب سے چھوٹا تھا عمر میں, میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلی چھوٹا ہونے کی وجہ سے, بڑے لڑکے بڑے بڑے ہوتے تھے. تو میرا بڑا بھائی تھا وہ کرکٹ کا بڑا شکین تھا, تو جب بھی میں لاہور جاتا تھا وہ تو اس نے اپنے بچوں کے نام بھی کرکٹروں پہ رکھے ہوئے. تو میں ویسٹ انڈیز ان دنوں میں بڑے مشہور ہوتے تھے, تو میں نے تیار تھی ہو کے بائبل لے کے میں نے اسٹیل ٹاؤن ادھر ادھر خدمت کے لیے جانے کے لیے تیار ہونا, تو ادھر ویسٹ انڈیز کا ون ڈے میچ لگا ہوا ہے. تو میں نے کہا چلو یار ایک شاٹ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ تیسرا دلچسپی پیدا ہوئی, تیسرا, چوتھا, پھر میں نے بائبل آ کے بیٹھ گیا. یہ بڑا اس میں انٹرسٹ ہے. ایک دن میں نے سوچا میں بیوقوف نہیں, میں تو نہ تو کر بائبل لے کے میں تو کہیں وزٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا. میں نے کتنا وقت ٹی وی پر بیٹھ کے گزار دیا. میں سمجھ گیا میرے اوپر, میرے وقت کے اوپر, میری خدمت کے اوپر یہ حملہ ہے. آج کے بعد میں کبھی خدا کا وقت, دعا کا وقت ہو, خدمت کا وقت ہو اور میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا ہوں, نہیں. ہم شیطان کے ہیلوں سے ناواقف نہیں ہیں. لائف کے اندر توازن ہونا بہت ضروری ہے. زبانی بتاتا ہوں, لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح ایک گھر میں آئے. اس گھر میں دو بہنیں تھیں, ایک مرتھا تھی اور ایک مریم تھی. جب خداوند ان کے گھر میں گئے تو مریم نے دیکھا کہ استاد آیا ہے, اور وہ ایک روحانی لڑکی تھی, اس کے پاس جتنے بھی وہ روحانی سوال سول تھے, اور وہ آ کر مسیح کے قدموں میں بیٹھ گئے. تو مرتھا نے کیا کیا, وہ بزی ہے کچن میں, اچھے اچھے استاد آیا, اچھے اچھے کھانے. اور جب وہ غیر روحانی کام میں مصروف ہے تو اندر چڑچڑا پانے اس کے اندر, اور الزام تراشی ہے. الزام تراشی اندازہ کریے, بہن پہ الزام نہیں لگا رہی. الزام کس پہ لگا رہی ہے؟ یسوع مسیح پہ, کہ اے یسوع, اے استاد, تجھے خیال نہیں ہے کہ یہ تیرے پاس بیٹھی ہے, مجھے اکیلا چھوڑ دیے کھانے وانے پکانے کے لیے. یہ ہے بلائنڈنس. جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کھانے پکا رہے ہیں, اسی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, تجھے خیال نہیں ہے, اس کو کہتا کیوں نہیں میری ہیلپ کر. یہ قدموں میں بیٹھ کے کلام سے سیکھ رہی ہے. جواب آپ جانتے, مسیح نے کیا دیا تھا؟ مرتھا مرتھا تو بہت سی چیزوں کی تردد میں ہے, اسی میں تو الزام تراشی بھی کرتی جا رہی ہے. تو کھانے جو میرے لیے بنا رہی ہے اس کی بھی تجھے کوئی برکت نہیں ملنی, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. کڑتے ہوئے کو کام کرنا, نہ چاہتے ہوئے کو کرنا, ٹوٹے ہوئے دل سے کرنا, مجبوری سے کرنا, اس کا کوئی اجر نہیں ہے, بھلے آپ دے یقی ہو, خدمت ہو, کچھ بھی. انہوں نے کہا ایک بات ضرور ہے, مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا جو اس سے چھینا. یہ روٹی تو بعد میں بھی پک سکتی تھی, یہ روٹی جو دینے کے لیے آیا تھا وہ روز کہاں سے ملتی تھی. لیکن نہیں, استاد آ رہا ہے, اچھے سے اچھے کھانے بنا کے ان کو کھلائے گی. بکھلاہٹ, غصہ, تلخی, الزام تراشی, جھنجھلاہٹ, اور وہ بھی بہن پر کم, استاد پر زیادہ. اور ساتھ یہ ہے کہ خدمت ہو رہی ہے, اس کے لیے کھانے پک رہے ہیں. دس از اسپرچل بلائنڈنس. جیسے میں نے کہا, ہماری ساری زندگی پر توازن کا اطلاق ہے. ایک کہاوت ہے, ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہم کریں گے. مثال کے طور پر ہمیں اتنا کھانا کھانا چاہیے جتنا کھانا کھا کے ہم زندہ رہ سکیں. آپ کو پتا بزیار خوری گناہ ہے. کھاتے ہیں تو کھاتے گئے, کھاتے گئے, کھاتے گئے, دعوتوں میں آپ دیکھ لیں. پھر محنت, یاد رکھیے, میں نے لوگوں کو محنت کی وجہ سے اب نارمل ہوتے بھی دیکھا ہے. میں نے ان کی دعائیں کی ہیں, میں نے ان کی لائف سٹوری جانی ہے کہ کس طرح سے, خصوصاً ہماری نرسز بہنیں, غریب لوگ, 36 گھنٹے کی ڈیوٹیاں, 48 گھنٹے کی ڈیوٹیاں. آپ کو پتہ ہے پرانے وقتوں میں ایک بڑی سزا ہوتی تھی مجرموں کی, کہ ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا. جس آدمی کی نیند نہ پوری ہو, جس عورت کا شوہر کام ہی نہیں کرتا, اور بڑے اس طرح کے فنکار ہمارے ہیں جو کام نہیں کرتے, بس وہ बेचारी हमारी बहनें वो मेहनत करती हैं तो उनका वो कमाया खाते हैं। और मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, सेहत उनकी आप देखो, फिजिकल प्रॉब्लम्स उनकी आप देखो, ज़रूरत से ज़्यादा मिला। एक दिन एक किसी खातून के बारे में मुझे किसी ने कहा कि आप हमारे ज़रा घर आइए। मैंने कहा खैर है? कहने लगे घर वाली कुछ हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? बस तुम आओगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा चलो आऊँगा तो मैं सही, पर मैं दसूँ तो सही कि क्या हुआ क्या, बस एवं लगता जी मैं कुछ आया है। मैं चला गया, जाकर उस बहन को मैंने पूछा क्या हुआ आपको, रोना शुरू कर दिया। बंदे ने बताया था इसको साया है, क्या हुआ आपको, रोना शुरू कर दिया। आज मैं 48 घंटे के बाद आई हूँ ड्यूटी करके, मैंने उसको थोड़ा सा झिड़का, मैंने कहा आपको अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, 48 घंटे में आप सोई थी वहां अस्पताल में कहीं, भाई जी कौन सोन देता है उसे, लोअर स्टाफ था। तो मैंने कहा आपको आपको खुदा की दी हुई जिंदगी की कोई खतरा नहीं है, आप 48 घंटे की ड्यूटी। मैं तो हैरान हो गए सुन के। कहने लगी भाई जी तुहानू पता नहीं ना जब अबू ने तो कदे काम किया ही नहीं। आ मैंने कहा अबू को तो मैं भी जानता हूँ, बच्चों की फीसें देनी है मैंने, राशन डालना है तो मैंने, मकान का किराया देना है तो मैंने, तो अगर मैं ये ना करूं तो मैं कैसे घर चलाऊं। मेहनत में भी एतदाल चाहिए। मैं एक दिन यहां दुआ कर रहा था, मुझे रोल कुछ ने बोल के कहा टू मच बिजनेस इज अबोमिनेशन बिफोर गॉड, जरूरत से ज्यादा मसरूफ रहना खुदा की निगाह में मकरूह है। सेहत की परवाह ना करना, आराम की परवाह ना करना। खुदा ने 6 दिन में काम किया, वो खुदा है, उसको आराम की जरूरत नहीं है, तब भी लिखा 7वें दिन उसने आराम किया। खुदा का शुक्र हो हुकूमतों के लिए, यूरोप में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, सैटरडे यहूदियों का इबादत का दिन है और जो सारे यूरोप में फैले हुए हैं, संडे मसीहों के लिए है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर ये भी छुट्टियां ना हो तो कई तो लोग तो काम कर कर के ही मर जाएं। कितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स जो है ओवरवर्क की वजह से होते हैं, और कई लोग इन मजबूरियों में वर्क एल्कोहलिक हो जाते हैं, उनको नशा होता है काम करने का, दूसरे का काम भी खुद ही करने का। तो आजन और इस तोआजन के दिए जहां मेहनत करना जरूरी है और उतनी मेहनत करनी है जितनी मुनासिब है, दूसरी तरफ सोए रहना। मैं कई मैरिजेस मैंने बर्बाद होती देखी हैं, बंदा काम नहीं करता 10-11 बजे सोया उठता है, बीवी 6 बजे बेचारी उठ के नाश्ता वाश्ता करके यूनिफॉर्म बदल के काम पे जा रही है। हद से ज्यादा आराम तलबी वो भी गुनाह है। ओवरवर्क करना, कोई ना कोई बदनी बीमारी लगा के हम बैठ जाएंगे। एतदाल। लूक मरकस की इंजील के 6वें बाब की 31 आयत में लिखा है, मरकस 6वें बाब की 31 आयत में खुदावन यीशु मसीह और उसके शिगिर्द बड़े शागिर्द जो थे वो बड़े बिजी थे, लोग आ जा रहे थे, यहां तक लिखा खाना खाने की फुर्सत नहीं थी। तो यीशु मसीह ने उसके इन्हें क्या कहा, आओ थोड़ी देर वीरान जगह पर चलो और थोड़ी देर आराम करो। मैंने देखा रिटायर लोग नौकरियां ढूंढते फिरते, बुजुर्ग लोग जिनका आराम करने का खुदा की हजूरी से लुत्फ अंदोज होने का वक्त है और खुदा के फजल से इतना खुदा ने उनको दिया हुआ है कि वो इज्जत की रोटी खा सकते हैं, लेकिन नहीं, नहीं। मैंने आपको शुरू में कहा जहां एतदाल नहीं होगा, जहां पर तोआज़न नहीं होगा, वहां बिगाड़ होगा। बच्चों का आप देखिए, खिलाड़ियों का आप देखिए, किसी किसी जगह लोग किसी खेल में इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि खेल ही उनका ओढ़ना और बचाना है। इम्तहानात में फेल, पढ़ाई में फेल, गटारे बजा ली, क्रिकेट खेल लिए। इल्मी दुनिया में आपने क्या अचीवमेंट की थी? अपने पांव पे आप कहाँ खड़े हुए थे? सारे नेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे। इसका मतलब है इधर भी तोहसन, जब लड़के लड़कियाँ आठवीं नौवीं दसवीं जमात में होते हैं, जब आके कैरियर बनना होता है, तो जो मुखलिस बाप की रूह रखने वाले असातिज़ा हैं वो बच्चों को तोहसन सिखाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जो खेलों में अच्छे हैं पढ़ाई में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं हैं। तोहसन रखें तो कितनी अच्छी बात है, पढ़ाई में भी सबसे आगे जाएँ, जीतें, जो वो खेल खेलते हैं उसमें भी वो जीत। फिर कई पढ़ाई इतनी है कि चर्च भी नहीं आना। मैं एक दिन एक ए ग्रेड स्टूडेंट के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा यार मैंने तुझे, तेरे मम्मी डैडी चर्च आते, मैंने तुझे कभी चर्च नहीं देखा। खैर, कहने लगा भाई जी कहाँ टाइम, काम इतना होता। मैंने कहा 16-17 क्लासें हमने भी पढ़ी हुई है, जितना को पढ़ने का है हमें भी पता है, इतना काम होता है, कहीं वक्त ही नहीं लगता। मैंने कहा नहीं देख बात सुन, हमने भी पढ़ा है, ये बात छोड़ दे, कलाम में लिखा है जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। हमें तो पैदा इसलिए किया गया कि खुदा की इबादत की जाए इन गलियों में, उसके तुम चर्च नहीं आ सकते, तो कितना को काम तुम्हें मिल रहा है। बहाने बहुने मैंने मुख्तलिफ जावियों से उसको कायल किया, फिर भी नहीं आया। एक दिन मैं यहाँ दुआ कर रहा था जहाँ ये काला पंखा पड़ा है, मेरे पास आ गया बड़ा मायूस ना उम्मीद, भाई जी अच्छा हुआ आप, मैंने दुआ करवानी थी, मैं आपके पास आया हूँ। मैंने कहा बताइए क्या बात है। उसको को मर्दाना पोशीदा बीमारी हो गई, मेरे पे आजमाइश आई, लेकिन मैंने खुदा के खौफ में मैंने उसको ताना नहीं दिया। दिल में मैंने सोचा मैं कितनी दफ़ा पीछे जाता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ, लेकिन अब पोशीदा बीमारी लग गई, अब खुदा का घर याद आ गया। बाइबल कहती है अहले ज़मीन खुशी से खुदा की इबादत करो, ये नहीं मजबूर हो जाएं, फंस जाएं किसी जगह पर, बीमार हो जाएं, तंगी और मसाइल का हमें सामना हो तो हमें खुदा याद आ जाए, जो कैसर का है कैसर को। कितने बेटे बेटियां मां बाप से नफरत करते हैं इसलिए कि मां बाप सारे जहान का बोझ उठाते हैं, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। पाकिस्तानी ड्रामे देख लो, फिल्में देख लो, हकीकतें देख लो, यही है। इसलिए खादम के लिए लिखा कि जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया का क्या करेगा। तोहसन नहीं है। लाजम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। वाइस की किताब में लिखा है कि हिकमत में इतना ना बढ़ जा कि तू फिलासफर बनकर तू दैर्य ही हो जाए, हिकमत में इतना ना बढ़ जा। इसमें तोहसन रख, इसको भी पकड़े रहे और उसको भी ना छोड़, तोहसन। तो जहां पर जिंदगी में तोहसन ना होगा, बिजनेस करने वाले, मैं कई बिजनेसमैन लोगों से मिलता हूँ, वो बताते हैं संडे को हमारी डील होती है, उस दिन नहीं हम आ सकते, वो बिजनेस होता है, चलो ठीक है, अब टू यू। क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए पहले खत के 7वें बाब की 31 आयत में पौलुस रसूल ने कहा दुनिया का कारोबार करने वाले ही नहीं, बिजनेसमैन बिजनेस के ना होकर रह जाए, कि इबादत और घराने के बीवी बच्चों के फराइज के लिए भी वो सड़कों पर ही हो पैसा कमाने के लिए। ऐसे लोग बाद में रोते हैं जब घर में आग लग जाती है ना, फिर रोते हैं कि हमने तो बच्चों के लिए सारा दिन मेहनत करते थे, ये होता था वो होता था, क्योंकि आपने तो आज़ाद ही ना रखा, आपको पैसा चाहिए था। किसी बात में आप किसी जाविये से आप उठाकर देख लीजिए, हमारी जिंदगी में जहां तो आज़ाद बिगड़ेगा वहां बिगाड़ पैदा होगा। मुझे एक बड़ा तजर्बा, मैं पहली दफा स्कॉटलैंड गया तो वहाँ पर एक मेरे मिशनरी दोस्त थे, तो उन्होंने किसी आदमी को मैं भेजा आगे से मुझे लेने के लिए, इंग्लैंड से मैं स्कॉटलैंड गया, वो अब बंदा मुझे लेने के लिए आ गया। तो मैंने कहा किस चर्च में जाना है, क्योंकि मैं वहाँ कलाम सुनाना था। तो चर्च की उन्होंने एक बात बताई जो आज तक, ये 95 की बात है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहने लगे, मैंने कहा इस चर्च का बिल्डिंग थी तो इसका पास्टर कौन है? कहने लगे इस चर्च का पास्टर कोई नहीं है। मैंने कहा ये चर्च इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, इसका पास्टर क्यों नहीं है भाई? कहने लगे कि ये चर्च था, स्कॉटलैंड की बात कर, ये चर्च था तो मेंबर ना होने की वजह से ये चर्च था बंद। इसमें झाड़ियाँ उगी हुई थी, इसके कब्जों को हर चीज़ को जंग लगा हुआ था, और इसमें नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं शराब शुरू पीते थे और रात को बुरे काम आके चर्च के कंपाउंड में करते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे किसी ने सोचा कि इस चर्च को आबाद करना चाहिए, तो वो एक पास्टर लेकर आए। उन्होंने कहा कि भैया इस चर्च का तो पास्टर है, इस चर्च को आबाद करने पैसे थे नहीं। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को कहा कि ये चर्च जो है इसमें पेंट का काम भी है, झाड़ियाँ भी काटनी है, अंदर की भी सफाई है, फर्नीचर पॉलिश भी होना है, तो कोई रजाकार, तो जितने खाते पीते अंग्रेज थे उन्होंने कहा हम अब पेंट भी अपने पास से लेकर आएंगे, आरियाँ हम लेकर आएंगे, हम घास भी काटेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप हमें बताएं। वो काम शुरू हो गया। तो जो पास्टर साहब थे उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी दुआ की। वो क्या करते थे, वो सवेरे आते थे दुआ की लिस्ट लेके, तो वो सारा दिन दुआ करते थे, तो वो किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे। तो जो लोग सारा दिन फ्री काम करते थे उन्होंने देखा ये खादम कैसा है, कोई दुआ का भी कोई वक्त होता है, कोई कलाम पढ़ने का भी वक्त होता है, हम एक दमड़ी नहीं ले रहे, अपने घरों से अपने पैसे अपने औजार अपनी मेहनत, ये सिर्फ दुआ करता है, किसी काम को हाथ नहीं लगाता। जो इंतज़ामिया थी उन्होंने कहा भी हमें ऐसा पादरी नहीं चाहिए जो सिर्फ कलाम ही सुना सकता है, हाथ ही नहीं लगाता किसी काम को। और उसको फिर मैं मिला भी उस बंदे को, मैंने कहा मैंने सुना ये सही है। मसबी इंतहा पसंद। एक दिन एक औरत मेरे पास रोती हुई आई, उस वक्त इस चर्च के प्लस्तर वगैरह नहीं हुआ था, रोती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा क्या हुआ आप क्यों रो रही? कहती अपने भाई को कुछ समझाएं, उसके आदमी की बात हो रही थी। मैंने कहा क्या? कहती मैं सारा दिन ड्यूटी डबल ड्यूटी करके आती हूँ, आधी रात को उठ के तो बुलंद आवाज़ से गैर जमाने बोलता है, दुआ करता है। अगर मैं कहती हूँ कि आप आहिस्ता आवाज़ से क्यों नहीं दुआ करते, तो कहते तेरे च शैतान है, तो दुआ च रुकावट है, इन्हों को समझाओ। मैंने कहा अच्छा समझाएंगे, मुझे पता तेरे आदमी का। फिर मुझे मैंने रोना था तुझे किस बात का है? कहने लगी मेरे बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ है, मेरे पास 2 रुपये थे, मैंने 2 रुपये का दूध मंगाया, उस दूध में मैंने पानी डाल के बच्चे को पिलाया, और अब दूध नहीं है तो मुझे कहता है कि मैंने दुआ करनी है, जा जितों मर्जी मंग के ले आते हैं पिला। ये है स्पिरिचुअलिटी उन जिस्मानी लोगों की जिनको शैतान ने अंधा किया हुआ है कि घर का बंदोबस्त ना करना, अपने एक फर्ज को अच्छा समझ करके और दूसरे को नेगलेक्ट करना। मसीह ने कहा लाजम था तुम ये भी करते, सौंफ पर दया यकी देना तुम्हें याद है, पुदीने पे दया यकी देना तुम्हें याद है, सुदा पर और जीरे पर दया यकी देने में तुम बड़े फर्ज शनास हो, लेकिन शरीयत की बड़ी बातें इंसाफ रहम ईमान। और लूका के झील में 11वें बाब में मोहब्बत का भी इजाफा किया गया कि तुम खुदा की मोहब्बत से गाफल हो। लिहाजा बहनों भाइयों, खुदा हमारा मुखालफ नहीं, खुदा से बड़ा हमारा खैर खा कोई नहीं। हम अपने दुश्मन को पहचाने, हम अपने दुश्मन को पहचाने, अपनी जिंदगी के अंदर तरतीब लेके आए, तुआजन लेकर आए। गाने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, झगड़े का एक वक्त है, सुलह का एक वक्त है, खाने का एक वक्त है, मुबशरत का एक वक्त, हर चीज के लिए खुदा की अल्लाही हिकमत में एक तवाजन है। जब उस तवाजन को बरकरार रखने में हम नाकाम रहेंगे तो बिगाड़ पैदा होगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये पिलर है, इस पिलर से एक रस्सी बांध दी जाए, दूसरा सिरा इस पिलर के साथ बांध दिया जाए, इस पर चला जा सकता है? क्योंकि हम सड़क पे चलने के आदि हैं, आसान भी है। इस पिलर से लेकर इस पिलर पर एक इतनी मोटी रस्सी या रस्सा बांध दिया जाए, यहां से चलकर हम दूसरी तरफ जा सकते हैं? मैं एक दिन बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और कुछ ईमानदार चर्च के बैठ के दुआ कर रहे हैं पहाड़ की एक चोटी पर। एक चोटी पर एक केबल लगाई हुई है और नीचे इतनी गहराई है और दूसरी केबल दूसरी तरफ है। तो कलीसिया कह के ईमानदार था, उसने इस केबल के ऊपर चलना था। तो लोग बैठ के तो दुआ कर रहे थे कि ये चल सके। उसने एक नेजे टाइप एक चीज हाथ में पकड़ी हुई थी और मैंने सब कुछ वो देख के एक ही बात का अंदाजा लगाया कि जब आप रस्सी पर चल सकते हैं, मैं भी चल सकता हूँ, आप भी चल सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे? तोआज़न रखने से। अगर हम तोआज़न रख सकें, ना हमारा वज़न इधर जाए ना इधर जाए, यहाँ से यहाँ तक बंधी हुई रस्सी पर हम भी चल सकते हैं। हो सकता है जब हम प्रैक्टिस करें 20 दफ़ा हम गिरें, 50 दफ़ा हम गिरें, एज सून एज वी लर्न टू हैव बैलेंस, अपना वज़न इस तरीके से रखिए कि हम ना इधर ज़्यादा वज़न जाए ना इधर जाए, हम चल सकते हैं। और ये इतना ईजी, ये इतना आसान नहीं। लेकिन हमारे लिए आसान क्यों है? हमारे पास एक मददगार है और वो खुदा का रूह है जो कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। जिन मुख्तसर रास्तों पर, तंग रास्तों पर, पकडंडियों पर, रस्सियों पर, तारों या जंजीरों पर हम नहीं चल सकते, वो खुदा हमें दनाई भी देता है, हिकमत भी देता है, तौफीक भी देता है, फजल भी देता है, साथ हमारे खड़ा होता है। लाइफ में तोआज़न बरकरार रखने में वो हमारी मदद करता है। जिसने कहा दुनिया में मुसीबत उठाते हो खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ और मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ।